मेरे प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार। आज 12 अक्टूबर 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन मित्र का नाम है अक्षय कुमार पाल, आप मुंबई महाराष्ट्र से हैं। तो अक्षय, आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत भावनात्मक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं कुछ बातें अपने उन स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, आप सभी मेरे स्टूडेंट हैं लेकिन उन स्टूडेंट से स्पेशली जो खासकर अभी अक्टूबर की क्लास के लिए भोपाल आ रहे हैं। मैं लगातार आप सबसे इस बारे में बातें कर रहा हूं। आज मैं आपसे स्पेशली दो बातें कहना चाहूंगा मित्रों, और ये बातें ऐसी हैं क्योंकि जैसे ही आप यहां आएंगे और हमारी क्लासेस शुरू होंगी तो शुरू होने के बाद ये सब बातें बताने का मौका नहीं होगा क्योंकि ये तो आपको पहले से ही तैयार होकर के आना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप दौड़ में जा रहे हैं तो ये थोड़ी कहा जाएगा कि हाँ अब आप अपने जूते बांध लीजिए, अब फीते कस लीजिए, नहीं, वो तो सीधे सीधे विसिल बजा देंगे और दौड़ शुरू हो जाएगी, पिस्टल छूटी और दौड़ शुरू। तो यहां भी वही होगा, तो आप पहले से अपनी पात्रता बनाकर आए, इसीलिए मैं ये बातें कह रहा हूं। दोस्तों, दो महत्वपूर्ण बातें। पहली बात ये कि अब कुछ समय के लिए आप प्रयोग करके देखिए, आप इसका बहुत फायदा उठाएंगे और हो सकता है कि आपकी आदत में कन्वर्ट हो जाए। हड़बड़ीपने को रोकिए। हम सब के अंदर के मैकेनिज्म में एक विचित्र किस्म का हड़बड़ीपना है, हड़बड़ हड़बड़, जल्दी जल्दी, इतनी जल्दी में हम होते हैं कि एक काम पूरा होता नहीं है कि दूसरे काम में लग जाते हैं। आप देखिए, भले ही हम काम ना कर रहे हो लेकिन दिमाग में वो हड़बड़ी, वो खलबली मची रहती है। मेरा वाक्य है, चीजों पर ध्यान दें, चीजों पर ध्यान दें। अगर मैं चीज कह रहा हूं तो उसमें वस्तु भी है, उसमें घटनाएं भी हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वह भी है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वहां थोड़ा सा वक्त लगाएं, थोड़ा सा रुकें, अपने अंदर के हड़बड़ीपने को थोड़ा सा कंट्रोल करें और उस पर ध्यान देने की कोशिश करें और इसे अपनी हैबिट बनाएं। अगर आप ध्यान देने की ही केवल आदत डाल लेंगे तो आप मान करके चलिए कि आप हर समय मेडिटेशन ही कर रहे हैं। मेडिटेशन का हिंदी अनुवाद ध्यान करना ही है और कुछ नहीं है। जिस चीज को भी हम ध्यान से करने लगते हैं वो मेडिटेशन में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। जिसे हमारे एक बहुत बड़े गुरु गोरखनाथ हुए हैं, आपने सुना होगा नाम, उन्होंने कहा था कि खेलब खाई करीबो ध्यान। बस ध्यान की परिभाषा उन्होंने ये कही कि खेल रहे हैं तो ध्यान कर रहे हैं, खेलने में मगन है तो ध्यान हो रहा है, खाना खा रहे हैं खाने में मगन है तो ध्यान हो रहा है। तो मैं तो जब खेलूंगा तब भी ध्यान करूंगा, खाऊंगा तब भी ध्यान करूंगा। मित्रों, इसे आप अपनी हैबिट बनाइए और यहां जब आप 15 दिन क्लासेस अटेंड करेंगे इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी और आप पाएंगे कि 15 दिन में आपकी आदत कुछ इस तरीके की बन भी जाएगी, राइट। तो चीजों पर थोड़ा सा ठहर कर, रुक कर, इत्मीनान के साथ वक्त गुजारने की कोशिश कीजिए। हड़बड़ीपने को बंद कीजिए। ढेर सारे काम करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही काम को ढेर सारा वक्त देकर करने की जरूरत होती है। दूसरी बात जो इस पहली बात से ही जुड़ी हुई है कि आप अपने मित्रों को, अपने पेरेंट्स को, सभी को ये बात बता दें, अच्छे तरीके से बता दें। यहां 10 बजे क्लासेस शुरू हो जाती हैं और 6 बजे तक तो चलती ही चलती हैं। कभी कभी कुछ कारणों से 6:15 भी बज जाते हैं, 6:30 भी बज जाते हैं, हो सकता है 7 भी बज जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन हो सकता है। यह मैं आत्म जानबूझ करके कह रहा हूं, अभी आप समझ जाएंगे। 10 बजे से 6 बजे तक आपकी क्लासेस होंगी और इस बीच में नो डाउट कि बीच बीच में छोटे छोटे गैप्स आते रहेंगे, जब आप यहां आएंगे तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। मैं यहां जो आप सबसे कहना चाह रहा हूं वो ये कि आप अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को ये बात बहुत अच्छे तरीके से बता दें कि 10 बजे से लेकर के एटलीस्ट 6 बजे तक का जो समय होगा आपके क्लास का समय होगा, राइट। इस समय वे आपको फोन तब तक न करें जब तक कि फोन करना बहुत ज्यादा जरूरी न हो जाए। जब तक बहुत कोई इमरजेंसी है तभी फोन करें। बेहतर होगा कि सुबह एक बार आप बात कर लीजिए, अपने पेरेंट्स को बता दीजिए। नो डाउट कि पेरेंट्स की अपनी चिंता स्वाभाविक होती है कि हमारा बच्चा हमारी बच्ची कुशल से है, तो आप सुबह एक बार उनको फोन करके बता दीजिए और फिर क्लास खत्म होने के बाद शाम को रात में उनको बता दीजिए, अपने हालचाल बता दीजिए। या बीच में जो गैप होते हैं, हालांकि आप उन गैप का प्रयोग करेंगे कैसे करेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा, अगर जरूरी हुआ तो उस समय आप फोन करके बता दीजिए। पेरेंट्स को ये कहिए कि 10 से 6 के बीच में वो फोन ना करें। देखिए क्या होगा कि पहली बात तो ये कि क्लास में कहा जाता है कि आप फोन जो है साइलेंट मोड पर नहीं रखेंगे, आप स्विच ऑफ करेंगे, क्योंकि साइलेंट मोड पर भी आएगा तो घर घर कर रहा है और आपका अटेंशन डाइवर्ट होगा। फिर आप सोचेंगे अरे किसका फोन है, कोई जरूरी फोन तो नहीं है, फिर आप निकाल के देखना चाहेंगे। इतने में कुछ बातें आपको बता दी जाएंगी और पता लगा कि आपका लिंक टूट गया और आप एक बहुत ही बड़े काम के लिए यहां आ रहे हैं। तो आपका फोन हमेशा बिल्कुल स्विच ऑफ मोड में होना चाहिए, साइलेंट मोड में नहीं, और वो रहेगा फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अपने घर में पहले से ही बता दें ताकि उनको ये इस बात की जानकारी हो, तो फिर वो भी चिंता नहीं करेंगे कि नहीं वहां तो ऐसा ही होगा, तो इससे आपका ध्यान भंग नहीं होगा। तो मित्रों अभी आपके पास पर्याप्त समय है और आपको चाहिए कि जैसे ही मेरे इस निर्देश को सुनते हैं प्लीज आप अपने पेरेंट्स को, घर में जो भी जिनसे भी आपकी फोन पर ज्यादा बातचीत होती हो, सभी को आप ये इतला दे दें। राइट मित्रों, ये दो बातें मुझे आप सबसे कहनी थी। अब मैं थोड़ी सी आप सबको कुछ सूचनाएं देना चाहूंगा जो मैं हर फ्राइडे को देता हूं, और वो हैं कल और परसों डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन कल आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी। योजना और कुरुक्षेत्र के आपको दो दो आर्टिकल पढ़ने को मिलेंगे, दो हिंदी में और दो इंग्लिश में। एक आपको वीकली क्वेश्चन दिया जाएगा, एक करेंट कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, और साथ ही साथ हमारे जो क्लास के स्टूडेंट होते हैं उन्हें स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाता है। दोस्तों आइए अब हम मुख्य विषय का थोड़ा सा देख लें। मुख्य विषय के तहत मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगा, चौथी औद्योगिक क्रांति। राइट, इस पर क्या हम बात करेंगे, क्यों करेंगे, उसकी मैं आगे चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं थोड़ी सी एक दूसरी जो घटना है उसकी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, और वो है चक्रवात पर। एक बात मैं और बता दूं कि मैं औद्योगिक क्रांति, चौथी औद्योगिक क्रांति पर बात करूंगा, लेकिन हो सकता है कि आज मेरी यह बात पूरी न हो क्योंकि वक्त कम बचा है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हो सकता है इस पर हम लोग फिर कल बात करें, क्योंकि अभी अभी मेरा ध्यान घड़ी की तरफ गया है, वक्त काफी कम है। शायद हो सकता है कि अब मैं जो चक्रवात तितली पर बात कर रहा हूं काफी वक्त यही ले ले, राइट। तो पहले से ही मैं आपको सतर्क कर दे रहा हूं उस बारे में कि अगर मैं अचानक खत्म कर दूं तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये क्या हो गया, और आपका समझना बिल्कुल स्वाभाविक है अगर आप ऐसा समझते हैं। तो मित्रों हम पहले चक्रवात तितली की बात करते हैं। बेसिकली चक्रवात तितली के बारे में मुझे उतनी बात नहीं करनी है जितनी कि चक्रवात के माध्यम से मुझे आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात करनी है। न्यूज में आपने सुना, मैंने आपको इशारे के तौर पर कल बताया भी था कि अभी हम देखते हैं कि ये जो चक्रवात है ये कितना आगे बढ़ता है, तो अब इसे नाम दे दिया गया है तितली। अब आप देखिए कि तितली तो कितनी खूबसूरत होती है, लेकिन कोई भी तूफान कम से कम खूबसूरत तो नहीं होता है, तबाही के सिवाय वो करता क्या है, राइट। और चक्रवात पर हम लोग इससे पहले काफी बात कर चुके हैं, आप देख रहे हैं कि लगातार चक्रवात आ रहे हैं, लगातार यहां आ रहे हैं, अमेरिका के पूर्वी तट पर आ रहे हैं, लगातार आप सुन रहे हैं, तो चक्रवात तो आप जानते हैं। अब आप देखिए कि जो आपकी ज्योग्राफी की तैयारी होती है, और दूसरा है आपदा प्रबंधन, राइट, डिजास्टर मैनेजमेंट बकायदे आपके सिलेबस में है। और आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देखिए, जो आपका थर्ड पेपर है जनरल स्टडीज मेंस का, उसके तीसरे पेपर में एक न एक क्वेश्चन हमेशा आपदा प्रबंधन पर होता ही होता है। किसी किसी साल दो क्वेश्चन भी आए हैं, लेकिन दो से अधिक नहीं आए हैं। यहां जो मैं आपको सतर्क करना चाहूंगा वो ये कि जब हम ये सुनते हैं कि एक क्वेश्चन, कितने में एक क्वेश्चन, 20 में एक क्वेश्चन, तो हमारा दिमाग क्या करता है, क्योंकि दिमाग मेहनत करने से बहुत ज्यादा सकुचाता है, भागना चाहता है, तो वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है यार कि एक ही क्वेश्चन तो आएगा, तो एक क्वेश्चन के लिए क्या मारा मारी करना, छोड़ो। लेकिन मैं कहूंगा कि साइंस से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, मैं कहूंगा सिक्योरिटी से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो कितनों को आप छोड़ेंगे, कितनों को आप इस तरीके से खत्म कर देंगे। फिर तो सीधी सी बात है कि छोड़ने की ये जो आदत है, ये एक तरीके से लिस्ट भी हमें छोड़ करके जो सिलेक्शन लिस्ट निकलेगी आगे बढ़ जाएगा, वो हमें छोड़ देगा। आज हम उसे छोड़ दें, कल वो हमें छोड़ देगा। ये जो आपदा प्रबंधन पर जो प्रश्न बनता है, याद रखिए कि ये इस तरह का होता है कि किसी भी स्टूडेंट से ये अपेक्षा नहीं की जाती कि वह उस प्रश्न को सॉल्व नहीं करेगा। ये आपके लिए अनिवार्य जैसा ही है, क्योंकि ये बहुत जटिल नहीं होता है, ये बहुत आसान सा प्रश्न होता है। मैं नहीं समझता कि जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उनमें से कोई भी ऐसा होता होगा जो कम से कम इस प्रश्न को सॉल्व नहीं करता होगा। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि जितने भी मेंस में बैठते हैं, भले उनका सिलेक्शन ना हो, हर स्टूडेंट लगभग लगभग इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करता ही है, क्योंकि ऐसा नहीं होता जो आपके सॉल्व करने से परे हो। हाँ, ये बात अलग है कि आप उसे कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, राइट? कल के अगर डीडी न्यूज को आपने देखा हो तो मित्रों, आप पाएंगे कि उसमें दो व्यक्ति थे, एक तो सीधे सीधे जो आपदा प्रबंधन संस्थान है उससे जुड़े हुए थे, और दूसरे उसका जो आर्मी पार्ट होता है उससे जुड़े हुए थे। और इन दोनों ने, एग्जीक्यूटिव पार्ट कह लीजिए, कि इन दोनों ने मिलकर के इस टॉपिक पर इतनी सुंदर बातें बताई थी कि उसको सुनने के बाद आपके पास उसका जो अंदर का मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म एकदम पकड़ में आ जाएगा कि यार ये सिस्टम काम कैसे करता है। बार बार न्यूज के रूप में आ रहा था कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने मीटिंग ली। अब एक फैक्ट प्री के लिए आपके दिमाग में आ गया कि साहब कुछ ऐसा तो होगा कि एक समिति बनी होगी, और उस समिति के जो की जो अध्यक्षता करते होंगे वो कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, और आप अगर कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होते हैं इसको जानते हैं तो आप उस समिति की अहमियत को समझ सकते हैं कि कितनी अहमियत आपदा प्रबंधन को दी जा रही है। और बकायदे डिस्कशन में उन्होंने बताया कि भारत में आपदा प्रबंधन के कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो विश्व में सर्वोत्तम सिस्टम में आते हैं, और इसके लिए उन्होंने इसरो जो काम कर रहा है, हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, उसकी बात उन्होंने बताई कि किस तरह से जो पूर्वानुमान लगाने के लिए, चेतावनी देने के लिए, मछुआरों की रक्षा के लिए, उनको सूचना देने के लिए जो धीरे धीरे सिस्टम डेवलप किया जा रहा है वो कितना एडवांस सिस्टम है। अब होता क्या है फ्रेंड्स कि ये चीजें आपको अखबारों में पढ़ने को नहीं मिलेंगी, अखबारों में नहीं मिलेंगी, ये केवल वही मिल सकती है जो उससे जुड़ा हुआ है और इस तरह के डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर वो लेख भी लिखेंगे ना तो अब ये तो बेसिक चीजें हैं, ये थोड़ी बताएंगे कि ये सिस्टम इस तरीके से काम करता है। किताबों में आपको मिल जाएगा पढ़ने को, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप उस पर कोर्स कर रहे हो। आप इस पर कोर्स तो कर नहीं रहे, आपको केवल जनरल स्टडीज तक की जानकारी चाहिए, तो वो जानकारी आपको ऐसे डिस्कशंस में ही मिल सकती है और वहीं से आपका विजन डेवलप होगा। आप अपनी तरफ से जो अनुमान लगा पाएंगे या किसी प्रश्न के उत्तर देने की स्थिति में अपने को ले जा पाएंगे वो ऐसे डिस्कशंस को सुनने के बाद ही। तो मित्रों, जैसा कि मैंने कहा था कि वक्त ज्यादा बात करने की इजाजत मुझे नहीं देगा, अब मैं अंत में आपसे 2018 में जो आपदा प्रबंधन पर प्रश्न पूछा गया है वो बताने आपको जा रहा हूं, राइट? 2018 में देखिए मैं पढ़ देता हूं, भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं DRR, जिसका फुल फॉर्म होगा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। कल न्यूज में इसकी चर्चा हुई है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रारूप 2015-2030, ये एक संधि हुई थी, प्रारूप है ये कि क्या क्या करना चाहिए, मतलब संधि तो क्या कहेंगे, हस्ताक्षरित करने से पूर्व एवं उसके पश्चात किए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। यह प्रारूप योगो कार्यवाही प्रारूप 2005 से किस प्रकार भिन्न है, ये बकायदे किताबों में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ये प्रश्न इस साल अक्टूबर में जो एग्जाम हुआ है, सितंबर लास्ट में कह लीजिए, उसमें पूछा गया था। तो दोस्तों, आपको मैंने एक नमूना बता दिया है, क्योंकि इस तरह के नमूने को जानने के बाद किसी टॉपिक की तैयारी कैसे की जानी चाहिए उसके बारे में हमारी जो क्षमता या कह लीजिए हमारा जो डायरेक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से निर्धारित हो जाता है। तो दोस्तों, वक्त खत्म हो चुका है। चौथी क्रांति की शुरुआत मैंने जानबूझ करके कट करके पहले वाले विषय को नहीं की है, सोमवार को अगर कोई दूसरी बहुत महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी तो डेफिनेटली हम लोग चौथी क्रांति पर बात करेंगे, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि हो सकता है कि इस साल मेंस में ही चौथी क्रांति पर बात कोई प्रश्न पूछ लिया जाए, लेकिन वह आया नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट ईयर के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। तो सोमवार को हम लोग इस पर बातें करेंगे। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपने अपने ढंग से देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से तीन मित्रों के नाम हैं, पुलकित उषा सरकार इलाहाबाद से, शुभम अग्रहरी और मनोज कुमार साह पूर्णिया बिहार से। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब दो दिनों के लिए मैं आप सबसे अनुमति चाहूंगा, मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें और साथ ही अभिवादन भी। नमस्कार।